నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృతం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జాయో ముదీరయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైశ్చికి. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే. ఓం అజ్ఞానాతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షూరున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. వాంఛాకల్పతరుభయశ్చ కృపాసింధుభయేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవృంద కీ జ. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జ. గురు మహారాజ్ కీ జ. కెంటో 4 chapter 14 టెక్స్ట్ 14 సె డిస్కస్ కరేంగే. మేరే పీచే ఆప్ సబ్ దొహరాయే. మునయా ఉచూహా నిపావరియా నిబోధైతాద్ యత్తే విజ్ఞాపయామ భో ఆయు శ్రీ బల కీర్తినాం తవ తత వివర్ధనం. Translation: The great sages said, "Dear king, we have come to give you good advice. Kindly hear us with great attention. By doing so, your duration of life and your opulence, strength and reputation will increase." Purport by Srila Prabhupada. Esi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. According to Vedic civilization, in a monarchy, the king is advised by saintly persons and sages. By taking their advice, he can become the greatest executive power and everyone in his kingdom will be happy, peaceful and prosperous. The great kings were very responsible in taking the instructions given by great saintly personalities. The kings used to accept the instructions given by great sages like Parasar, Vyasadeva, Narada, Devala and Asita. In other words, they would first accept the authority of saintly persons and then execute their monarchical power. Unfortunately, in the present age of Kali, the head of government does not follow the instructions given by the saintly persons. Therefore, neither the citizens nor the men of government are very happy. Their duration of life is shortened and almost everyone is wretched and bereft of bodily strength and spiritual power. If citizens want to be happy and prosperous in this democratic age, they should not elect rascals and fools who have no respect for saintly persons. So this is a very beautiful శ్లోక్. ఆజకే శ్లోక్ మే ఇంపార్టెన్స్ దే రే కి కేసే పురానే యుగ్ మే యా పహలే కే యుగ్ మే సెయింట్లీ పీపుల్ మనే సాధువో కో బహుత్ హి రెస్పెక్ట్ దియా జాతా థా, ఉన్కి బాతో కో బహుత్ గంభీర్తా సే లియా జాతా థా, ఉన్కి అడ్వైస్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కే అనుసార్ హి జో రాజా హై వో అప్నే డిసిషన్స్ లియా కర్తే థే. ఆజ్ కా హమారా జో యే శ్లోక్ హై, యే మహారాజ్ వేణా కి కథా కే సాథ్ సంబంధిత హై. ఆప్కో పతా హై శ్రీమద్ భాగవతం కే చతుస్కంద మే ధ్రువ మహారాజ్ కి కహానీ ఆతీ హై. ఔర్ ధ్రువ మహారాజ్ జబ్ తపస్యా కర్నే జాతే హై, భగవాన్ కో ప్రసన్న కర్తే హై, ఉస్కే బాద్ మే వే రాజా బన్తే హై, బహుత్ సాలో తక్ రూల్ కర్తే హై, ఉన్కే బాద్ మే उनका बेटा जो है वो राजा बनता है, ध्रुव महाराज फिर फॉरेस्ट में चले जाते हैं, और उसके बाद में उनके बाद का जो कुल है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए हम यहाँ पे आ गए हैं महाराज अंग की कहानी। तो महाराज अंग जो है वो भी ध्रुव महाराज की ही लाइन में आते हैं। अब ये जो महाराज अंग थे वे बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत पुण्य करते थे, अपने सिटीजन्स को बहुत अच्छी तरह से देखते थे, लेकिन उनको कोई पुत्र नहीं है। तो क्योंकि उनको पुत्र नहीं है, वो एक बार एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और उस यज्ञ के जो यज्ञ पुरुष है वो बाहर आते हैं और उनको खीर देते हैं, खीर प्रदान करते हैं, और फिर महाराज अंग उस खीर को लेके अपनी पत्नी को देते हैं। हालांकि उनकी पत्नी इतनी क्वालिफाइड नहीं थी, महाराज अंग बहुत पुण्यशाली थे लेकिन उनकी पत्नी इतनी क्वालिफाइड नहीं थी, लेकिन राजा का धर्म होता है कि राज्य को आगे चलाने के लिए उन्हें कोई उत्तराधिकारी देना पड़ता है राज्य को। तो वो क्या करते हैं, उस खीर को लेते हैं और अपनी पत्नी को देते हैं, और फिर उनको एक पुत्र होता है जिसका नाम है वेना। अब ये जो पुत्र है वेना, इसमें कोई अच्छे गुण नहीं है, वे दूसरे प्राणियों को मारता था। इनफैक्ट अपने साथ में जब वो छोटा था अपने साथ में भी जिन बच्चों के साथ खेलता था उन्हें कभी कभी खेल में ही मार देता था, उतना क्रूर स्वभाव का था। तो वहां के जितने भी सिटीजन्स थे वो उनको पसंद नहीं करते थे। अब महाराज अंग ने भी बहुत कोशिश की कि उसे सुधारने की कोशिश करें, तो उसे पनिशमेंट दिया करते थे जब भी वो कोई गलती करता था, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आया। तो महाराज अंग को बहुत दुख हुआ, तो वो बोलने लगे कि अगर मुझे पुत्र होता ही नहीं तो अच्छा था, ऐसा पुत्र हुआ अब मैं क्या करूं। तो एक दिन महाराज अंग के मन में विचार आया कि मैं अब राज्य छोड़ के चल जाता हूं, क्योंकि मैं अपने पुत्र को तो चेंज कर नहीं पा रहा हूं लेकिन सामने उसको देख भी नहीं पा रहा हूं वो जिस तरह से प्रवर्तन कर रहा है। तो एक दिन रात को जब सारे सोए हुए रहते हैं महाराज अंग चले जाते हैं राज्य को छोड़ के। सुबह जब सब उठते देखते राजा कहाँ है, सब राजा को ढूंढ रहे हैं, बहुत कोशिश की वो कहीं नहीं मिले। अब सिंहासन को खाली तो रख नहीं सकते, तो अब उन दिनों में क्या होता था, ये जो साधु होते थे जो प्रिस्ट होते थे सारी एडवाइस उनसे ली जाती थी। तो अब सब उनके पास गए कि अब बोलो क्या किया जाए। तो अब सारे प्रिस्ट जो है सेंटली पीपल, उन्होंने डिसीशन लिया कि महाराज जो है वेना को बनाया जाए। बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि वेना तो अच्छा नहीं है, फिर आप उसको क्यों बनाना चाहते हो। इन्होंने बोला कि भाई और कोई चॉइस भी तो नहीं है, ये एक ही है, तो इसको अभी बना देते क्योंकि ये जो है राजा के कुल को बिलोंग करता है। तो महाराज वेना को जो है वो राजा बना देते हैं। अब राजा बनाने के बाद भी उसकी कोई बुरी आदत कम नहीं होती है, वो और भी खराब हो जाता है, उसमें और भी पावर आ जाती है, वो लोगों को तकलीफ देना शुरू करता है। अब फाइनली एक दिन ये साधु पुरुषों की एक सभा होती है, उनमें सब डिसीशन लेते हैं कि चलो एक काम करते हैं, वेना के पास आज जाते हैं, उसको फाइनल वार्निंग देते हैं तुम चेंज होगे कि नहीं, अगर तुम चेंज नहीं होंगे तो हम जो है तुम्हें यहीं का यहीं मार देंगे। तो ऑफ कोर्स सुनने में हमें बहुत अजीब लगता है कि साधु किसी को मार देंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन साधुओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां अन्याय हो रहा हो या जहां पे कोई चीज गलत हो रही हो उसको प्रोटेक्ट करने का दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी साधुओं का है। तो फाइनली हमारे आज के श्लोक में मुनायु उचुहा, माने बहुत सारे मुनि लोग सब एक साथ में गए किंग वेना के पास में, और बहुत प्यार से उन्होंने क्या बोला, डियर किंग, प्यारे राजा, हम आपको एक अच्छी एडवाइस देने के लिए आए हैं, आप हमारी एडवाइस अगर सुनेंगे तो आपका जीवन काल बढ़ेगा, आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा, आपका बहुत कुछ अच्छा होगा, काइंडली मेरी बात, हमारी बात आप सुनिए। अब यहाँ पे आप देखिए बहुत सुंदर बात एक श्लोक में है, यहाँ बोलते हैं तात तव तात विवर्धनाम, तात माने बेटा, तात माने बेटा, डियर सन, यहाँ पे ट्रांसलेशन में देते हैं। अब इमेजिन करिए, जो आदमी इतना बुरा है किंग वेना, उसको भी कितने प्यार से साधु लोग बोलते हैं बेटा। इसका मतलब जो साधु होते हैं वो बाई नेचर बहुत कंपैशनेट होते हैं, बहुत दया वाले होते हैं, बहुत दया से भरे हुए होते हैं। यहाँ पे भी प्रभुपाद जी इस बात को बताते हैं कि उन दिनों में साधुओं की एडवाइस पे ही सब कुछ चलता था, क्योंकि साधु जब कुछ बोलते हैं तो उनकी बातें मोह से लगी हुई नहीं रहती है, वो हर चीज को सटीक देखते हैं। हमारा और आपका क्या होता है, कभी कभी हम लाल रंग के चश्मे लगा देते हैं तो हमें सब कुछ लाल लगता है, कभी हरे रंग के चश्मे लगाते तो सब कुछ हरा लगता है। जब हमारा चांटिंग अच्छा चलता है, हम अच्छे मूड में है, डिवोटी एसोसिएशन में है, तो हमें हर चीज अलग सी दिखती है। जब हम माया में है तब हमें हर चीज अलग सी दिखती है, हम हर चीज का अलग से इंटरप्रिटेशन देते हैं। लेकिन जो साधु होते हैं वो तो हर सिचुएशन में समा होते हैं, ना वो कभी बहुत ज्यादा माया में हो जाते या ना कभी, नहीं वो हमेशा समा रहते, वो हर सिचुएशन में सटीक समाधान दे पाते हैं, राइट। ना वो ज्यादा दुखी हो जाते ना ज्यादा सुखी हो जाते, उनका अपमान करो उनकी प्रेज करो, वो हर सिचुएशन में समा है, इसलिए वो हर चीज को सही से डिसीशन ले पाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पूर्व में जो राजा थे वे सब साधुओं की एडवाइस लिया करते थे, साधुओं के अनुसार चलते थे, साधुओं का संग करना चाहिए, साधुओं के हमारे जीवन में साधुओं को मेंटर बनाना चाहिए, क्योंकि साधु जो बोलते हैं वो बड़े नाप तोल के बोलते हैं, हमारे जीवन को सही दिशा में साधु ले जाते हैं। साधुओं में बहुत दया होती है। हिंदी में एक भजन आता है ना, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। जो संत होते वो हमेशा दूसरों के हित के बारे में ही सोचते हैं, उनका और कोई मोटिव ही नहीं होता, और कभी कभी अपेरेंटली अगर वो क्रूर भी लगे हमें एट द आउटसेट कि नहीं हमारे साथ में साधु डांट रहे या हमसे गुस्सा है या हमसे, उनकी हर चीज में प्यार छुपा रहता है, उनके हर बिहेवियर में भी हमारे लिए बहुत ज्यादा प्यार छुपा हुआ रहता है। साधु को तो कभी किसी पे क्रोध आता ही नहीं। जैसे माँ बाप होते हैं, कभी बच्चों को डांट देते हैं, क्या माँ बाप बच्चों को हेट करते हैं? नहीं करते हैं। अगर वो डांट रहे मतलब कितना प्यार करते हैं इसलिए डांटते हैं। अगर साधु हमें डांट दे, हमें श्राप दे तो भी, हम तो देखते हैं ना भागवत में तो पूरा पड़ा हुआ है कैसे साधुओं के श्राप भी भक्तों का हित ही करते हैं, है ना। अगर हम देखें भागवत में कथा आती है कैसे नारद मुनि ने नलकुबेर और मणिग्रीव दोनों को श्राप दिया था। एक बार नारद मुनि चले जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मणिग्रीव और नलकुबेर जो कुबेर के दो बेटे हैं वे नग्न नहा रहे थे, तो नारद मुनि ने उन्हें डांट दिया कि आप मुझे देख के भी अपना जो है ये जल क्रीड़ा खत्म नहीं कर रहे हो, जाओ तुम जाके वृक्ष बनोगे। अब क्या किया नारद मुनि ने, उन्हें श्राप दिया, लेकिन श्राप उनके लिए हितकारी था कि नहीं था? हितकारी था ना। क्या हुआ, श्राप देने के बाद वो दोनों क्या बन गए, झाड़ बन गए। कहाँ बन गए वो झाड़, ठाकुर जी के आंगन में, वृंदावन में, गोकुल में, जहां पे ठाकुर जी का घर में, गोकुल में, उनके आंगन में वे दो वृक्ष बन गए। और फिर उन्होंने उधर क्या हुआ, वे रोज भगवान की लीला देख पा रहे थे, और एक बार भगवान ने क्या किया, उन्हें मोक्ष प्रदान कर दिया। तो उसका मतलब नारद मुनि का श्राप भी उनके लिए हितकारी हुआ ना। आप देखिए हुहु नाम के जो राजा थे उनको देवल मुनि ने श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था देवल मुनि ने? श्राप दिया था कि वो क्रोकोडाइल मगरमच्छ बन जाएंगे। लेकिन मगरमच्छ बनने के बाद उनका हित हुआ कि नहीं हुआ? हित हुआ ना। क्या हुआ, गजेंद्र मोक्ष में इस क्रोकोडाइल को, इस मगरमच्छ को किसने वध किया? भगवान खुद विष्णु जी आए और चक्र से उसको वध किए और उसका मोक्ष हो गया। तो हितकारी हुआ ना। आप देखिए परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, किसने दिया था परीक्षित महाराज को श्राप? श्रृंगी ऋषि ने, तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया तो परीक्षित महाराज का हित हुआ कि नहीं हुआ? 7 दिन उनको भागवत सुनने का लाभ मिला, हमारा भी हित हो गया, उनके वजह से हमें भी भागवत मिला है भागवत में, ये तो सबके हित में ही हो रहा है। अब और एक हम सुनते हैं 10th canto में महाराज नृगी की कथा, आपने सुनी है? महाराज नृगी जो थे वे बहुत पुण्यशाली थे, बहुत दान देते थे, हजारों लाखों गाय दान देते थे। तो एक बार उन्होंने हजारों लाखों गाय दान दे दी। दान देने के बाद ऐसा हुआ कि दिए हुए दान में से एक गाय उनके गौशाला में वापिस आ गई। अब गाय का क्या है, उनको जो गौशाला में आदत है तो वो सोची रात को जो है घूमते हुए उस गौशाला में वापिस आ गई। अब महाराज नृगी को तो ये बात पता नहीं है, उन्होंने क्या किया, फिर और एक 10,000 गाय को लेके किसी और ब्राह्मण को दान दे दिया। अब इस ब्राह्मण ने बोला, पहले वाले ब्राह्मण ने बोला कि ये तो मेरी गाय है, नया वाला ब्राह्मण जिसको अभी दान दिया था वो बोला ये तो मेरी गाय है। अब दोनों के बीच में तर्क हो रहा है, महाराज नृगी ने बोला मैं तुमको दूसरी 10,000 गाय दे देता हूं, इसको छोड़ दो। दोनों बोलते हमको यही गाय चाहिए। अंत में क्या हुआ, महाराज नृगी को श्राप मिला और वो क्या बन गए, छिपकली। छिपकली बन के किस में थे, वो कुएं के अंदर में, हजारों साल तक वो कुएं के अंदर में थे। तो हम यहां देखते हैं कि महाराज नृगी को शाप मिला, वो छिपकली बन गए। अब वो भी उनके लिए हितकारी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जब वो छिपकली बन के कुएं में थे तो वहां पे उन्हें किनका दर्शन हुआ, भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। तो उसका मतलब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब साधु पुरुष अगर श्राप भी दे तो वो हमारे हित में ही है, इसलिए साधुओं के एसोसिएशन में रहना है। उनकी कोई भी बात, उनका हमारे साथ कोई भी बात करना हमारे हित के लिए ही होता है। जैसे प्रभुपाद जी कभी कभी डांट देते थे, फूल रास्कल बोलते थे, लेकिन वो भी भक्तों के हित के लिए ही था। मैं बहुत बार ये कहानी बताती हूँ, कैसे प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्यों को ट्रेन कर रहे थे कि आपको कैसे तर्क करना चाहिए जो नास्तिक लोग होते हैं। तो प्रभुपाद डिवोटी है और उनके भक्त नास्तिक होने का नाटक कर रहे हैं, और वो प्रभुपाद जी के साथ में तर्क कर रहे हैं, नहीं हम नहीं मानते भगवान में, और प्रभुपाद जी कोई तर्क बोल रहे हैं, फिर वो लोग कोई तर्क दे रहे हैं। तो हर तर्क के बीच में प्रभुपाद बोलते हैं यू फूल यू रास्कल। डिवोटीज बोलते हैं कि प्रभुपाद जी एक मिनट, इस गेम को यहाँ स्टॉप करते हैं, सबसे पहले तो आप हमारे साथ सीधे सीधे तर्क करो, बीच बीच में फूल रास्कल क्यों बोलते हो, आप सही से तर्क करो। तो प्रभुपाद जी ने बोला बिकॉज आई लव यू रास्कल, बिकॉज आई लव यू। तो हमको जब गुरु डांट भी दे, गुस्सा भी दिखाए, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं, तो प्रभुपाद जी कितना प्यार करते थे, तो आउट ऑफ हिज लव एंड कंपैशन उनसे देखा नहीं जा रहा कि इसको, इस रास्कल को मैं कैसे समझाऊं कि भगवान की भक्ति करो। प्रभुपाद जी बहुत दयालु थे, किसके साथ में कैसे बिहेव करना है, किसको कब क्या बोलना है, किसको क्या बोलने से उसको भक्ति में ला सकते हैं, प्रभुपाद जी उसमें एक्सपर्ट थे। एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पे गए जुहू में बीच था, जैसे हमारे विशाखापट्टनम के जैसे जुहू मंदिर के पास बीच है। तो मॉर्निंग वॉक में गए प्रभुपाद जी, तो जब मॉर्निंग वॉक में गए तो साधारण तो वहाँ पे जो दूसरे बिजनेसमैन या दूसरे कर्मी लोग जब जॉगिंग कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, जितना बार भी कोई सामने से दिख रहा है, प्रभुपाद और उनके शिष्य ऐसे चल रहे हैं, सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, तो जितनी बार भी सामने से कोई और दिख रहा है तो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो सबको गुड मॉर्निंग बोलते हुए प्रभुपाद वॉकिंग कंप्लीट हो गया। जब प्रभुपाद जी अपने कमरे में वापिस गए तो शिष्यों ने पूछा कि प्रभुपाद जी अगर आप डांटो नहीं तो हमें एक क्वेश्चन है। प्रभुपाद जी ने बोला पूछो क्या हुआ। बोला आपने गुड मॉर्निंग क्यों बोला, अगर आप हरे कृष्णा बोलते तो भगवान का नाम उनके कान में जाता ना, गुड मॉर्निंग बोलने से क्या लाभ हुआ। प्रभुपाद जी ने कोई जवाब नहीं दिया, शिष्य लोग भी कुछ नहीं बोले। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर गए मॉर्निंग वॉक में, इस बार क्या हुआ, जितने लोगों को, जितने बिजनेसमैन को, सबको प्रभुपाद जी ने गुड मॉर्निंग बोला था, आज वो सारे प्रभुपाद जी को देख के बोल रहे हरे कृष्ण स्वामी जी हरे कृष्ण स्वामी जी। और फिर प्रभुपाद जी मुस्कुराए अपने शिष्यों के सामने देख के कि समझ में आया अभी बात. द होल थिंग इज जो जैसा है पहले आप उसकी तरह आप उसको नॉर्मल इंसान दिखने चाहिए ना, तब तो वो आपके साथ रिलेट करेंगे. अगर पहले ही दिन प्रभुपाद बोल देते हरे कृष्णा तो क्या होता था, उनको थोड़ा सा ये ऐसे हरे कृष्णा क्यों बोल रहे हैं. लेकिन प्रभुपाद जी ने उनकी भाषा में बात की, उनको पहले गुड मॉर्निंग बोला और फिर उनको लगा कि स्वामी जी हमें खुश करने के लिए गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं तो हम भी तो उनको खुश करने के लिए हरे कृष्णा बोल सकते हैं. तो ये प्रभुपाद जी की खूबी थी. जो संत है वो जानता है किससे कैसे बात करनी है, किसको कैसे भक्ति में लाना है, किसको कैसी ट्रीटमेंट. संत तो डॉक्टर है, जिस तरह से डॉक्टर को पता होता है बीमारी में किसको क्रोसिन देना है, किसको क्या देना है, संत को भी पता है. कभी किसी को बहुत ज्यादा प्यार दे के भक्त बनाते हैं, कभी किसी को बहुत पैम्पर करके भक्त बनाते हैं, कभी किसी से बिल्कुल बात नहीं करके भक्त बनाते हैं, कभी किसी को डांट के भक्त बनाते हैं, कभी किसी से रूठ जाते हैं. उनका अपना ही ट्रीटमेंट है, किसको क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है वो ट्रीटमेंट वो देते हैं. ठाकुर जी भी तो ऐसे ही है. हाँ, कृष्ण और अर्जुन की ये कहानी आती है ना, कैसे कृष्ण और अर्जुन एक बार वन में टहल रहे थे और टहलते टहलते वे एक बुढ़िया के घर पहुंच गए. तो इस बुढ़िया के पास में एक गाय थी, तो बुढ़िया बहुत खुश हो गई कि कृष्ण अर्जुन आए हैं. तो उसने क्या किया, गाय का जो दूध है ठाकुर जी को ऑफर किया. तो उसकी छोटी सी जो झोपड़ी थी उसमें भगवान को रहने का स्थान दिया. तो दो तीन दिन भगवान उसकी सेवा स्वीकार किए, बहुत खुश हुए. और जिस दिन ठाकुर जी चले जा रहे थे वो रोने लगी कि मुझे और भी आपकी सेवा करनी थी, आप चले जा रहे हो. अब जब रास्ते में वे वापस जा रहे थे तब अर्जुन ने पूछा कृष्ण से, जी ठाकुर जी आपने इस बुढ़िया को क्या दिया, इस बुढ़िया ने आपकी इतनी सेवा की, मुझे लगता है आपने जरूर उसको मोक्ष दिया होगा, आपने जरूर उसके लिए कुछ, क्या आपने उसके लिए सोचा है. तो भगवान ने बोला, वेल फिलहाल तो मैंने उसको ये वरदान दिया कि उसकी गाय मर जाए, उसकी गाय मर जाए. अर्जुन बोला, ये क्या है, बुढ़िया है बेचारी, गरीब है, उसका कोई नहीं है, उसको गाय के सिवाय उसका कोई नहीं है, वो गाय का दूध ही थोड़ा सा बेच बाज के रहती है, आपने उसको ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया कि उसकी गाय मर जाए. तब कृष्ण ने बोला कि उसको अपनी गाय से इतना ज्यादा अटैचमेंट है, अब उसका मृत्यु काल पास में आने वाला है, अब 10 दिन में वो मरने वाली है. अगर आज मैं गाय को मारने का वरदान या मरने का वरदान नहीं देता तो जब वो प्राण छोड़ेगी, गाय के बारे में सोचती सोचती छोड़ेगी. और भगवत गीता में कृष्ण ने क्या बोला, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतंते कलेवरम तम तम इवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता. लास्ट में मरते समय आप जिस चीज के बारे में सोचते हो आपको वो ही शरीर मिलता है. गाय के बारे में सोचेगी तो फिर गाय का शरीर मिलेगा, इसलिए मैंने ऐसा वरदान दिया कि उसकी गाय मर जाए. अब जब उसके पास में गाय नहीं रहेगी तो वो क्या करेगी, मेरे बारे में सोचेगी और मेरे धाम को प्राप्त करेगी. तो कभी कभी हम नहीं समझ पाते भगवान की क्या लीला है, लेकिन भगवान का अपना ही एक कैलकुलेशन है, वो भक्तों को सही दिशा में ले आने के लिए अलग अलग तरीके निकालते हैं. हमारी सेंसेस लिमिटेड है, हम इस कमरे में क्या हो रहा है सिर्फ उतना जानते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो हमारा फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी ठाकुर जी जानते हैं. इंग्लिश में कहावत है, वी सी अवर प्रेजेंट एंड डिसाइड अवर फ्यूचर बट द लॉर्ड सीज अवर फ्यूचर एंड डिसाइड्स अवर प्रेजेंट. समझ में आया बात, हम हमारी प्रेजेंट देख के फ्यूचर डिसाइड करते हैं. मेरे पास इतना पैसा है, मुझे इस लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आगे चल के मुझे ये लैंड काम में आएगा. तो हम क्या करते हैं, हमारा प्रेजेंट देख के फ्यूचर का डिसाइड करते हैं. लेकिन ठाकुर जी क्या करते हैं, वो हमारा फ्यूचर देख के हमारा प्रेजेंट डिसाइड करते हैं. वो देखते हैं फ्यूचर में इसको इस चीज की जरूरत है तो मैं उसका प्रेजेंट अभी इतना थोड़ा सा बदलूंगा, इतना सा बदलूंगा. कभी कभी वो बदलाव हमें अच्छे नहीं लगते, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए ही है. भगवान हमारे श्रेय अभिलाषी है, भगवान हमारे श्रेय अभिलाषी है, हमारे बेस्ट फ्रेंड है. वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही सोचते हैं. हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, गुरु पे विश्वास रखना चाहिए. कभी कभी गुरु के इंस्ट्रक्शंस भी एट द सरफेस हमें अच्छे ना लगे, हमें समझ में ना आए, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए वो जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जीवन की एक कथा बताते हुए मैं यहाँ पे खत्म करूंगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आश्रम में एक ब्रह्मचारी रहता था। वो ब्रह्मचारी ने 40 साल गौड़ीय मठ में अपनी सेवा दी थी। एंड में पता चला कि उसको कैंसर है। तो जब वो डॉक्टर ने बोल दिया कि थोड़े दिन में वो मरने वाला है, तो उसने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, 40 साल मैंने इस मिशन को मेरी सेवा दी है, अब मैं मेरी माँ से मिलना चाहूंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा तुम नहीं मिल सकते। उसे बहुत दुख लगा, लेकिन गुरु की बात तो माननी पड़ेगी, तो वो नहीं गया। अंत में जब डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये सिर्फ 4-5 दिन का मेहमान है, कभी भी मर सकता है, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस शिष्य को बोला तुम जाओ अपनी माँ से मिल के आओ। उसने बोला कि मैंने तो पहले बोला था मैं जाऊंगा माँ से मिलने, आपने भेजा नहीं, अभी सिर्फ 4-5 दिन में मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जाना चाहता अपनी माँ से मिलने। क्यों क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि माँ कलकत्ता में है, अब नवद्वीप धाम छोड़ के मैं कलकत्ता जाऊंगा, वहां अगर मैं गुजर गया तो क्या फायदा, 40 साल मैंने भगवान की सेवा की है, मैं तो मेरा शरीर धाम में ही त्याग करना चाहूंगा, मैं नहीं जाना चाहता गुरुजी। गुरुजी ने बोला तुमको जाना ही पड़ेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जबरदस्ती की, किसी शिष्य को बोला इसको पकड़ो ट्रेन में डालो और माँ के पास लेके जाओ। अब ये रोता हुआ गया, रास्ते में ट्रेन में उसका देहांत हो गया। अब जो शिष्य उसको लेके जा रहा था ट्रेन में, उसे बड़ा गुस्सा आया, वे वापस गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूछा ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आया, ये बेचारा रोता हुआ अपना देह को त्याग किया, आपने पहले क्यों नहीं भेजा उसको अपनी माँ के पास। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कितना सुंदर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अगर थोड़े महीने पहले मैं उसको भेज देता उसकी माँ के पास तो क्या होता था, 40 साल से अपनी माँ को मिला नहीं है तो हजारों बातें हो जाती, अब माँ बाप को मिलेंगे तो क्या बातें होगी, चाचा की शादी हो गई, चाची को 2 बेटे हुए, इसकी प्रॉपर्टी वो चाचा ने ले ली, काका ने तो ये किया, इतनी सारी बातें, तब क्या होता था अगर वो अपनी देह त्याग करता था तो उसको अपने परिवार के जन, अपनी माँ, यही सब याद आता था। लेकिन अब जब मैंने उसको भेजा है ट्रेन में, तब वो क्या कॉन्शियसनेस में गया, वो रोते रोते गया कि मुझे नवद्वीप में अपना शरीर त्याग करना है, मुझे नवद्वीप में अपना शरीर त्याग करना है, उसके मन में नवद्वीप के सिवा और कुछ था ही नहीं, तो अब कैसी कॉन्शियसनेस में गया, नवद्वीप धाम को याद करते हुए उसने अपना शरीर को त्याग किया है। भक्ति तो मन का प्रोसेस है, मन में आप क्या सोचते हो, मन से आप क्या करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्रिया में तो बहुत कुछ कर देते हैं लेकिन मन कुछ कहीं और भागता है, मन को कंट्रोल करना है। तो जो हमारे गुरु होते हैं, कभी कभी ऐसा कोई टफ इंस्ट्रक्शन दे भी दे तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो हमारे अच्छे के लिए ही है। तो आज के इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि साधु पुरुषों का संग करो, साधु पुरुषों का संग करो, साधु पुरुषों पे विश्वास रखो, साधु पुरुषों की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार अपना जीवन यापन करो। श्री प्रभुपाद की एक शिष्य थी जानकी माता जी, सेंट फ्रांसिस्को में रहती थी। 1967-68 में जो नए नए सब भक्त बने तब उनके पास में एक बिल्ली थी, वो अपनी बिल्ली को बहुत प्यार करते थे, हमेशा बिल्ली को देखते रहती थी। अब एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी को किसी ने आके मैसेज दिया कि जानकी माता जी की बिल्ली मर गई, तो प्रभुपाद जी इमीडिएटली स्माइल करके बोले वेरी गुड। तो डिवोटीज को लगा कि प्रभुपाद जी तो साधु है, कोई मर गया, एक बिल्ली मर गई तो उन्हें खुशी क्यों हुई। प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, ये बिल्ली जो है उनको भक्ति से दूर कर रही थी, हमेशा वो बिल्ली पे उसका ध्यान बहुत ज्यादा रहता था, अब जब वो बिल्ली मर गई है तो अब उसका भक्ति पे ज्यादा ध्यान रहेगा, अब वो ज्यादा सीरियस होंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस में। और ऐसा हुआ भी, सबने ऑब्जर्व किया कि जानकी माता जी और भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ गई। ऐसा ही एक कहानी आती है प्रभुपाद जी की, और एक शिष्या थी उनको भी बिल्ली का के साथ में बहुत लगाव था। तो एक बार उनके घर में गए थे प्रभुपाद जी भजन प्रोग्राम में, तो उनकी जो बिल्ली थी वो प्रभुपाद जी के पास में आके प्रभुपाद जी का पैर टच किया, तो प्रभुपाद जी ने भी प्यार से थोड़ा सा ऐसा कर दिया उसको, और नेक्स्ट डे वो बिल्ली मर गई। तो अब हमारी तो ऐसी ये ओपिनियन होती है कि साधु पुरुष किसी को छुएंगे तो उसकी तो लाइफ स्पैन बढ़ जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी साधु पुरुषों की ऐसी लीला होती है कि जो हमें, हमारे और कृष्ण के बीच में आए ऐसी चीजों को वो अपनी दया से हमारे और कृष्ण के बीच से निकाल देते हैं। तो ये गुरु का श्राप नहीं है कि उसकी बिल्ली मर जाए या उसका कुत्ता मर जाए, ये तो गुरु का प्यार है कि वो सोचते हैं कि ये चीज अगर बीच में आ रही है तो इस चीज को भगवान जो है बीच से निकाल दे, राइट। तो आज के श्लोक का यही तात्पर्य है कि साधुओं का संग करो, साधु पुरुषों का संग करना चाहिए, उनकी एडवाइस हमें लेनी चाहिए। वो हमारे लिए जो भी बोलते हैं करते हैं वो डॉक्टर है, हमारी आध्यात्मिक हेल्थ के लिए जो अच्छा है वो हमें उसी तरह से गाइडेंस देते हैं। ये बोल के मैं आज यही खत्म करूंगी। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, हरे कृष्ण। आई विल टेक क्वेश्चंस, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए।
सब कृष्णा।